हालेलुया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मसीही जिंदगी में उन बेफायदा बातों और फायदा की बातों पर गौर कर रहे हैं। कल हमने सीखा था कि हम को तारीकी के फर्जंद नहीं बनना बल्कि नूर के फर्जंदों की तरह जिंदगी गुजारनी है। तारीकी बाइबल मुकद्दस में जहां कहीं भी पदेश से अगर जांचना शुरू करें तो वहां पर खुदा ने देखा कि अंधेरा है, तारीकी है। खुदा ने तारीकी को नूर से क्या कर दिया? अलहदा कर दिया। तारीकी अलहदा कर दी, नूर को अलहदा कर दिया। और नूर खुदावन खुदा की नुमाइंदगी करता है, जिसमें पाकीजगी, रासबाजी, सदाकत, हर तरह की भलाई, हर तरह की ऊंचाई है। और तारीकी हर तरह के गुनाह को, जिसमें हसद, बुगज, नाफरमानी और दूसरी तमाम बातें हैं, झगड़ा, फसाद, ये तमाम क्या हैं? तारीकी के काम हैं। सो हम सबको पता है कि हम कौन हैं, क्या हैं? तुम दुनिया का नूर हो। ये लफ्ज, ये लकब वही बेटी बेटा अपने नाम के साथ लगा सकता है जो अपने आप को मसीही कहता है, जो अपने आप को मसीही कहता है। मसीह से मुराद, यानी के मसीही से मुराद मसीह के पीछे चलने वाले लोग। इसलिए आए हम आज रोमियो 8 बाप उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे और इस हिस्सा में अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे कि हमें जिस्मानी बातों पर नहीं बल्कि रूहानी बातों पर गौर करनी है। जिस्मानी बातें, जिस्मानी नियत मौत है, रूहानी नियत, रूहानी ताबेदारी क्या है? जिंदगी है। सो हम मसीही होते हुए जब यीशु को कबूल करते हैं, हम मौत से निकलकर कहां पर आ जाते हैं? जिंदगी में आ जाते हैं। लेकिन ईमानदार होते हुए हम ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं जो के मौत, जो के बदहाली, जो के लापरवाही की जिंदगी हो सकती है। और बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से लोगों का जिक्र मिलता है जो ईमानदार थे लेकिन उन्होंने गैर ईमानदारों की तरह जिंदगी गुजारी। सो आज के दौर में हम ईमानदार होते हुए गैर ईमानदारों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। क्यों? दुनिया, दुनिया की ख्वाहिशें, हमारी अपनी ख्वाहिशें और इबलीस का फरेब। ईमानदार गैर ईमानदारों की जिंदगी बसर करना बहुत दफा पसंद करते हैं। इससे मेरा क्या मतलब है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अबरानियों के मुसन्नफ में कि ईमानदारों ने इस तरह जिंदगी गुजारी के जैसे वो गुमराह लोग हैं। बियाबान में हम देखते हैं कि मूसा की रहनुमाई में हजारों, लाखों, करोड़ों ने क्या किया? जब वो खुदा के पहाड़ पर गया खुदा से गुफ्तगू करने, खुदा से कलाम लेने, तो पीछे लोगों ने, ईमानदारों ने क्या किया? बेईमान लोगों की तरह जिंदगी गुजारी। अगर उस वक्त ये सच हो सकता है तो आज भी ये मुमकिन है और ये हो रहा है। मेरा नाम जी फज्जा मसीह और प्रस्तश किसकी? माइकाल का की। तो क्या हुआ? फज्जा मसीह, अबादत किसकी? हिंदुओं के खुदा की। मेरा नाम जी अल्ताफ मसीह और इबादत किसकी? ठेकुआ वाले पीर दी। सो क्या हुआ? मसीही होते हुए गैर मसीहियों की तरह जिंदगी। बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता, कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता कि तू किसी मबूद के आगे झुकना, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे किसी ऐसी सूरत को ना बनाना। So, इसीलिए आज सुबह आप सबने देखा था यर्मिया नबी इसी बात को कहता है कि मालाउन, लानती वो बंदा है जो इंसान की बजाय खुदा के बनाए हुए बंदे पर यकीन करता है। सो आए हम रोमियो 8 बाप उसकी पहली आयत से देखें। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। हमें उस अबदी हलाकत से क्या मिल गया है? छुटकारा मिल गया है। वो कौन सी सजा की बात कर रहा है? वो सजा जो दूसरी मौत है। उससे आपको, अगर आज आप मसीही हैं, ये नहीं कि मैं रफजाना मसीह हूं और आबादत किसी और की, अगर हम मसीही हैं तो फिर हम पर दूसरी मौत का कोई हुक्म नहीं है। हम आलम रवा में नहीं जाएंगे बल्कि आलम बाला पर जाएंगे। आलम रवा जिसे पाताल, जिसे क्या कहते हैं कि गैर ईमानदारों और अबलीस के उन तमाम फरिश्तों की जगह जहां पर उनको कैद किया गया है, जहां पर उनको सजा देने के लिए जमा किया गया है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पहली नबूवत जब की और खुदावंद खुदा के बंदा पतरस को क्या कहा कि पतरस अब से कलीसिया पर, किस पर? कलीसिया पर। कलीसिया का मतलब है खुदा का बदन, खुदा के लोग, खुदा का मजबा जो उस पर क्या करते हैं, यकीन और भरोसा करते हैं। कलीसिया पर अब से आलमे रवा के दरवाजे गालब नहीं आएंगे। आलमे रवा किसे कहा गया है? दोजक को, पाताल को, जहां पर बहुत से फरिश्तगान कैद किए गए हैं। कलीसिया पर वो दरवाजे गालब नहीं आएंगे बल्कि वो उन दरवाजों से पार आलमे बाला पर, आलमे बाला कहां पर? खुदा की हजूरी में जाएंगे। सो अब जो मसीह यसु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, और जो मसीह यसु में नहीं है उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। यूहन्ना की इंजील 3:16 हम सब दिल से जानते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और 36वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा ने, और 3:16-17 आयत में क्या लिखा है? खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि उसके वसीला से लोग क्या करें? निजात पाएं। और जो कोई उसके बेटे पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है, और जिसने उसके नाम पर ईमान नहीं रखा उस पर सजा का हुक्म हो चुका। और सजा के हुक्म की वजह क्या है? 16:36 आयत में, इसलिए कि वो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए। वो में हर एक वो बंदा और बंदी शामिल है जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। सो इसलिए खुदावंद का बंदा पालूस कहता है, पस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आप कौन हैं? आजाद या गुलाम? आजाद लोग हैं ना जी। हाँ जी, गुनाह से आजाद लोग। दूसरे लफ्जों में कि गुनाह का हम पर कोई इख्तियार नहीं, गुनाह का हम पर कोई इख्तियार नहीं, गुनाह की हम पर कोई भी हुकूमत नहीं। सो अगर आज हम गुनाह करते हैं तो अपनी मर्जी से, अगर हम कहें कि फलाने मुझसे गुनाह करवा दिया तो फिर हम फरेब में हैं जी। मैं नाराज हूं किस वजह से जी, मेरे बेटे ने जी ये किया। हमें इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। मैं नाराज हूं जी कि मेरे चाचे ने ये किया। कोई भी वजह लगा लें, आप वजह ढूंढ सकते हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। और भैन गुस्सा का तो चढ़िया, भाई तेरा भाई है जिहड़ा खर्चा नहीं दिंदा, इस करके उहदी वजह तो इदां इदां, ते इस करके मैं हांडी का चो कढ़िया होया वा ताकि मैं ना लड़ा। सो कोई भी वजह नहीं बनता, हम खुद वजह बनते हैं। आप मुझे नाराज नहीं कर सकते चाहे कुछ मर्जी कहे जाएं, मैं आपको नाराज नहीं कर सकता चाहे आप कुछ मर्जी मैं आपसे कहे जाऊं। आप सबको याद है यीशु मसीह का वो रवैया कि उसने अपने गालियां देने वालों को, उसने अपने लानत करने वालों को, उसने अपने सताने वालों को क्या किया? बुरा भला ना कहा। एज़िक खामोश, तो क्या लिखा है कि उसने क्या किया अपने सताने वालों के लिए? क्या की? बरकत चाहिए। सो इस फरेब में ना रहें कि जी फलाह ने मुझे गुस्सा दिलाया, फलाह ने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। कोई भी किसी को मजबूर कर नहीं सकता, कोई भी किसी को मजबूर कर नहीं सकता। अबलीस भी हमें मजबूर नहीं करता, बल्कि सलाह देता है, बल्कि फरेब देता है, और हम उसकी कुंडी में फंस जाते हैं, हम उसकी कुंडी में फंस जाते हैं। सो हम आजाद किए गए हैं, इस आजादी में हम फैसला कर सकते हैं कि गुलाम रहेंगे या आजाद रहेंगे। मसीह यसु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया, इसलिए कि जो शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया। वो काम जो शरीयत जिस्म के तबार से नहीं कर सकती थी, खुदा ने किया। किसके वसीला से? अपने बेटे के वसीला से कि खुदा ने किया, यानी अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म देकर। सादा लफ्जों में बहुत बड़ी आयत है, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को गुनाह की कुर्बानी के तौर पर दे दिया, ताकि हम गुलामी में जिंदगी बसर करें नहीं, ताकि हम फरेब में जिंदगी बसर करें नहीं, ताकि हम बहरूपियों की जिंदगी बसर करें नहीं, ताकि हम नाम फज्जा मसीह और इबादत देवी देवताओं की करें नहीं, नाम अल्ताफ मसीह और एतकाद सिर दुखा तो ठेकुआ वाले बाबे के पास, लत दुखी तो तेती वाले बाबे के पास। इसलिए हम चुनाव कर सकते हैं कि गुलामी में रहेंगे या आजादी में। यह हमारा अपना फैसला है हर रोज, ना कि तब ही खुदा को खुदा कहें जब हमारे घर में रोटी रिजक की फरावानी हो, और जब रोटी रिजक की थोड़ी सी आजमाइश हो, कारोबार खराब हो, तो फिर किसी ने साडा कारोबार बंद दिता, कोई साढ़े तो खुश नहीं गा सी दो वक्त की रोटी खाने, कोई साढ़े तो राजी नहीं गा। फरेब अबलीस की तरफ से उस दोजक की क्या कहते हैं कि तरफ से है। याद रखें, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उस खालक की मर्जी के सिवा, यीशु मसीह की मर्जी के सिवा आपको कोई आफत छू नहीं सकती। जबूर कान में हम बहुत दफा गाते हैं और पढ़ते हैं, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छेटा हेठा वो आराम पाउंदा है। खुदा दा खंभ, खुदा दी हाथ, खुदावद दे परां दे थले। सो इस बात को कहना बंद करें कि जी फलां ने मेरा कारोबार बंद कर दिया, फलां ने मुझे नजर लगा दी। यीशु मसीह के लोगों को ऐसे फरेबों से, मनगढ़ंत कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दो वक्त की रोटी का कहते हैं कि हमारी रोटी रोक दी। अय्यूब नबी इतना अमीर आदमी था कि आज तक उस जैसा कोई ना हुआ है और ना होगा दौलत के लिहाज से। सुलेमान बादशाह एक दिन के उसके पता नहीं कितने बकरे, कितने सौ बकरे पकते थे, और किलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से उसके साल की क्या थी, सोने की क्या थी, एक एक बादशाह की आमदनी उसके घर में आती थी। उसने तो नहीं कहा कि मुझे नजर लग गई, उसने तो नहीं कहा कि मेरा किसी ने कारोबार बांध दिया। याद रखें, अगर हम मसीह के हैं तो हमें मसीह के अलावा, उसकी मर्जी के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी, अबलीस खुद भी नहीं। खुदा का शुक्र है कि खुदा जानता था कि मेरे लोगों का ऐसा रवैया हो सकता है। उसने अय्यूब नबी की जिंदगी के वाकयात हमारे लिए लिखे कि शैतान पहली दफा आता है, खुदावन से कहता है कि तेरा बंदा अय्यूब, उसके गिर्द तेरी बाड़ लगी हुई है, तेरी हिफाजत लगी हुई है, मैं उसे छू नहीं सकता। अगर इजाजत दे, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तो फिर मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। वही बाढ़ जो अय्यूब के गिर्द लगी है, वही बाढ़ जो बागे अदन के गिर्द 16 जन तलवारों की लगी है, वही बाढ़ उसी कुदरत से जिसे खुदा का पाक रूह कहते हैं, आपके आपके मेरे अंदर रहता है, मेरे और आपके अंदर रहता है। नहीं यकीन, निकालें हवाला। पहला करंथियों उसका छठा बाप, पहला करंथियों उसका छठा बाप। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल उन लोगों को जो फरेब में आने के बायस गुमराही की तरफ जा रहे थे, जो जिस्मानी बातों में जिंदगी गुजारते थे, उनको कहता है। पहला करंथियों छठा बाप उसकी 19वीं आयत। ये बात आज आपसे और मैं एक दूसरे से कह सकते हैं, क्या तुम नहीं जानते करंथियों से वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है। रूहुल कुद्दस के रहने की जगह, मकदस से मुराद यानी कि हैकल, रहने की जगह, सकूनत की जगह, खुदा के पाक रूह का मकान। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है। अगर खुदा का पाक रूह हमारे अंदर रहता है और हम कहते हैं कि जी एक दिन खराब लगा तो किसी ने हमारा कारोबार बांध दिया, हम खुद गुलामी की बातों की तरफ रागब होते हैं, गुलामी की बातों को जैसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, हमें उस ढगे की मानद नहीं बनना कि फरेब की पट्टी अपनी आंखों के बांध के और कोलू के ऊपर वो सारा दिन घूमता रहता है और शाम को जब उसकी पट्टी उठाई जाती है, उसके जहन में यही है कि उसने बहुत से मील सफर किया है, और जब वो देखता है अपने आप को तो उसी जगह पर खड़ा है जहां से उसने शुरू किया था। हमें ऐसे मसीही नहीं बनना कि फरेब की पट्टी जो इब्लीस हमारे आंखों पर लगा दे, वो हसद की हो सकती है, गुमराही की हो सकती है, लापरवाही की हो सकती है, रियाकारी की हो सकती है, और या फिर सच से गुमराही की हो सकती है, और हम उस बैल की तरह गीत गाते जाएं और घूमते रहें और 10 साल 20 साल बाद जब आंखें खुलें तो वहीं के वहीं। हमें ऐसे मसीही नहीं बनना, उसके कोलू के बैल की तरह घूमते नहीं रहना, आगे बढ़ना है। सो पालूस रसूल कहता है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, खुदा का पाक रूह, खुदा के रहने की जगह, इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं। क्योंकि बहुत दफा हम कहते हैं हम गुनाहगार हैं, किस तरह हो सकता है। हाँ जी, हम गुनाहगार हैं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये खुदा का फजल है, खुदा का रहम है कि उसने ये पसंद किया कि हम गुनाह आलूदा जिंदगियों में आकर हमको क्या करे, पाक करे। इसीलिए हमें रहमत मसीह कहते हैं, इसीलिए हमें अलियास मसीह कहते हैं, इसीलिए हमें आतफ मसीह कहते हैं। सो जब मसीह का नाम जुड़ जाता है तो मसीही कहलाने के साथ साथ हमें मुकद्दसीन होने का दर्जा मिलता है। सवाल वही है, हम आजाद हैं या गुलाम हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। सो आगे क्या कहता है पालूस रसूल, 20वीं आयत, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। कहां से? कीमत से खरीदे गए हो। किसी गुलाम को जब खरीदा जाता था तो वो आजाद कर दिया जाता था। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, और क्या कहा है, तुम आजाद हो उस लाजर की तरह। 4 दिन के मुर्दे कब्र से बाहर आ, और कब्र से मुर्दा बाहर आया, इसकी पट्टियों खोल दो और इसे जाने दो। और लाजर अपनी जिंदगी में उसकी गवाही देता है। सो आगे क्या लिखा है, पस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। अपने बदनों से किसका जलाल जाहिर करना है? काली मां का, ठेकुआ वाले दा, 86 वाले दा, 96 वाले दा, 11वीं वाले दा। पड़ोसी को देने के लिए गिलास दूध नहीं कभी दिया, और 11वीं वाले के लिए पूरा पूरा देश का खीर का। ऐसे मसीहियों पर खुदा कहता है अफसोस, अफसोस ऐसे मसीहियों पर कि जो होठों से मेरी ताजीम, होठों से हालेलुया, होशियाना, खुदावन का बेटा पैदा हुआ, और कामों से एक नान पर, हलवे पर जय 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 फलां दी टमकां दी जिड़े फना होए होए, ऐसे मसीही नहीं बनना, ऐसे मसीही नहीं बनना। अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। मेरे साथ इस आयत को देखेंगे और हम इस पर खत्म करेंगे। रोमियो 8 बाप उसकी 12 आयत, रोमियो 8 बाप उसकी 12 आयत। पस ए भाइयों, इन तमाम बातों का वो जो नतीजा पालूस रसूल निकालता है, कहता है पस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, के जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हम कर्जदार हैं, कीमत से खरीदे गए हैं, यीशु मसीह के कर्जदार हैं, और इस कर्जे को हम कभी भी उतार नहीं सकते क्योंकि हम इस लायक है ही नहीं। लेकिन वो सादा सी बात हमें क्या कहता है, मैंने तुम्हें आजाद किया है, आजाद रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर बात है। हम कर्जदार तो हैं जिस्म के नहीं, कि जिस्मानी हरकतें करें, जिस्मानी बातों में जिंदगी गुजारें। जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जरूर जीते रहोगे। अपने बदनों से यीशु का जलाल या फिर किसी और उस बदरू का, जो एक दिन आपके और मेरे सामने खड़ी होगी और कहेगी मैं कितनी गलत थी, और अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह उसे दूसरी मौत, उसकी आग की झील में उसे फेंका जाएगा, और वहां पर चीखें, वहां पर वो तमाम रोना धोना हम उनका देखेंगे। तो इसलिए जिस्मानी या रूहानी, आज मसीही जिस्मानी की तरह जिंदगी गुजारते हैं और रूहानी, मसीही रूहानी की तरह भी जिंदगी गुजारते हैं। हमें कौन से बनना है? हमारे नाम के साथ तो लिख दिया गया है पतरस मसीह, और काम हमारे, हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मेरा नाम रूथ है, मेरा नाम आस्तर है, मेरा नाम मरियम है, और काम बहनों और भाइयों, हमें जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारनी है। अगर नहीं गुजारेंगे तो जब वो आएगा हमारा कुछ अजर नहीं होगा। हो सकता है कि पड़ोसी का खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में महल हो और हमारे पास एक बांस वाला वो तरपाल का टोटा हो और उसमें बैठे हुए जिंदगी बसर करें। सो अजर हम सब यहाँ पर कमा सकते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत, जितनी ज़्यादा पाकीज़गी की ज़िंदगी उसके साथ गुजारेंगे। किसी को 10 शहरों पर हुक्म, किसी को 5, और किसी के पास जो कुछ था उससे ले लिया, क्योंकि उसने उसे मुर्दा जाना। हो सकता है उसका नाम अल्ताफ मसीह हो और उसने कहा दुनिया की मौजों में ज़िंदगी गुजारो, छोड़ो परा मसीह को और मसीहत को। हो सकता है उसका नाम मरियम मसीह हो, हो सकता है उसका नाम और कोई हो। इसलिए जिस्म में नहीं बल्कि रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारनी है। आए हम दुआ करें।